बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय। आज का प्रश्न है दान। दान को संसार भर के महापुरुषों ने एक ही दृष्टि से देखा है, चाहे वो कहीं जन्मा हो, बशर्ते कि महापुरुष हुआ हो। धर्म किसी सीमा में आबद्ध नहीं होता। धर्म का स्वरूप एक और उसमें घटने वाली प्रक्रियाएं एक और सुविधाएं परिणाम भी एक ही जैसा हुआ करता है। दान परमात्मा की ओर है और संग्रह है संसार की ओर। उसमें हम जकड़ते ही जाएंगे, घसीटते ही चले जाएंगे। और चाहिए उतना ही संसार में प्रवृत्ति मार्ग में उलझते ही और गहराते चले जाएंगे। संसार में दो ही तो मार्ग हैं, एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ होता है संसार में प्रवृत्त होना। हमारे 10 जन्म के संस्कारों की रस्सी है, उससे हम जकड़े हैं। और प्रवृत्त हुए तो 20 हो जाएगा, और क्या होगा। वो ये मार्ग कहीं पहुंचाता नहीं। और भूल भुलैया का संग्रह बढ़ा देता है, किंतु निवृत्ति ही एक मार्ग है जो संसार के जन्म मृत्यु के आवागमन के शोक संताप के बंधनों से हमें मुक्ति दिलाता है। हमें अपना सहज स्वरूप अनंत जीवन, सदा रहने वाली समृद्धि और शांति प्राप्त कराता है, जहाँ जन्म नहीं और मृत्यु नहीं, शोक नहीं, प्रियजनों का वियोग नहीं। ये परम की स्थिति दिलाने के लिए सर्वोपरि माध्यम रहा है सदैव से दान। जिस दिन से हम रंच मात्र भी दान करते हैं, उतना संसार को त्याग देते हैं। फिर सने सने बड़ा दान करने की क्षमता आ जाती है। एक दिन वो अपने माँ बाप और संसार के मोह के सिकंजे को भी तोड़ देता है। एक दिन वो अपने मन में स्थित संस्कारों की रील, जो संसार के प्रति आकर्षण है, उस वृत्ति का भी निरोध कर देता है और अपने आप को मन क्रम वचन से समर्पित कर देता उन प्रभु के चरणों में। सर्वस्व दान देने में समर्थ हो जाता है। दान सदैव परमात्मा की ओर रहा है और संग्रह है माया की ओर। संग्रह हम करते हैं। दो विद्वान पंडित गंगा किनारे बैठ के पूजा कर रहे थे। दोनों मौन थे, दोनों कर्मकांडी। दोनों के मन में एक ही चिंता थी, माघ का महीना चढ़ गया, ठंडी बढ़ रही है, कंबल मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। इतने में गंगा में बहता हुआ एक कंबल दिखाई पड़ गया, तो पंडित जी ने अध्ययन भी नहीं किया, उतना उनके पास समय नहीं था, क्योंकि पड़ोसी पंडित जी की निगाह न पड़ जाए। 60 दिनों पूजा बंद किया और कूद पड़े एकदम, जाके उस कंबल को पकड़ लिया, कहीं पड़ोसी पंडित जी ने ले ले। और वो था जंगली भालू। पलट के पंडित जी को पकड़ लिया, अब करने लगे, मौन तो थे ही। इतने में पूजा वाले पंडित जी ने मौन तोड़ा और कहा, अरे पंडित जी, कंबल यदि बहुत वजनी हो तो छोड़ दो, भविष्य में भगवान फिर देंगे। तब उन्होंने भी अपना मौन तोड़ा और कहा, पंडित जी, हम तो कंबल को छोड़ रहे हैं, लेकिन कंबल ही हमें नहीं छोड़ता। एक बार संग्रह की लिप्सा लग गई तो उत्तरोत्तर वो पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, उसमें जादू है, खींच लेता है। फिर मनुष्य उसमें गहराता ही चला जाता है, फिर वो वासना ही हमें जकड़ लेती है। सब जानते हैं क्या झूठ है क्या सच है, लेकिन वो पार ही नहीं लगता है। फिर घूम के वहीं खड़े। इसलिए संग्रह है सदैव बंधन है, प्रवृत्ति की ओर है संसार है, त्याग सदैव परमात्मा की ओर है। इसके द्वारा हम लोक में समृद्धि भी पा लेते हैं और परम श्रेय तक की दूरी तय करते हैं। और अरब में एक बड़ा रईस धनवान करोड़पतियों से आगे, महाकंजूस, कभी एक मुट्ठी ग्रास, एक ग्रास, एक निवाला किसी को नहीं दिया उसने, लेकिन उसे उसका धंधा था शुद्ध कमाना। कुरान के अनुसार, वरिष्ठ महापुरुषों के अनुसार सूद लेना निकृष्ट है, सूद नहीं लेना चाहिए, इसके लिए रोक है। लेकिन उसका धंधा ही सूद का था, देता तो सभी को था, लेकिन उन ग्राहकों को ढूंढा करता था जो हज करने जाते थे। क्यों? वो गरीब बहुत दिनों के बाद ही चुका पाते थे कर्जा, और तीरथ का कर्जा लोग देते ही थे, चाहे घर बेच के दें, नहीं तो फल नहीं होगा उनको, और वो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के और बड़ी लंबा सूद लेता रहा, धंधा चल निकला। मुस्कुराता था कि वाह, कोई फंसे हज जाने वाला, एक क्योंकि चिंतन तो हज वालों का कर रहा था, तो धर्म तो नहीं किया, लेकिन चिंतन तो हज वालों का कर रहा था, इसलिए एक बार उसका पुण्य जगा। उसने ख्वाब देखा कि दो फरिश्ते आसमान में उड़ते हुए चले जा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, कहिए इस साल हज कितने लोग पहुंचे? बोले 4 लाख। कितनों का हज कबूल हुआ? बोले 1 का भी नहीं। बोले अरे 1 का भी नहीं? बोले हां 1 का कबूल हुआ। वो हज गया तो नहीं था किंतु कबूल हो गया। वो इसी गांव का रहने वाला ही, जो कोठी है रईस की, इसके पीछ पिछवाड़े जो घर है वो उसका है झोपड़ा। बोले इसका क्यों कबूल हो गया? बोले 1 साल अथक परिश्रम करके उसने 1000 दिनार कमाया, 1000 की रकम जुटाई और हज के लिए चलने ही वाला था कि एक जंगल से संतों की मंडली पहुंच गई, भजना नदी फकीरों की। बोले हम बहुत भूखे हैं, उधर अकाल चल रहा है, जंगल में कोई अब व्यवस्था नहीं रह गई, भक्त कुछ अब पहले खिलाओ। तो उसने तुरंत सारी व्यवस्था कर दी, उनको वस्त्र भी दिए, उनको खिलाया भी, सारा पैसा खर्च हो गया। तब हज की ओर मुंह करके सादर साष्टांग दंडवत कर लिया। गया तो नहीं था लेकिन हज उसका कबूल हो गया। उस दिन से उस कंजूस रईस की आंखें खुल गई, दूसरे ही दिन से दिल खोल के दान करने लगा। चोटी का कंजूस और चोटी का दानदाता, उसे रास्ता मिल गया कि मोक्ष का मार्ग यही है कि दो, दान दो, एक एक ग्रास काम में आने वाला है, भला घर बैठे हज का कबूल हो गया। इसलिए हर हालत में जो हृदय से नेकी का पथ चलता है वो अपना है, वो सही है, नहीं तो न कहीं मंदिर कुछ देता है, न मस्जिद, न हज ही कुछ देता है। श्रद्धा देती है, समर्पण देता है, दान सर्वोपरि है। महाभारत की एक उपकथा है कि दुर्योधन ने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा, केशव मैं चक्रवर्ती क्यों हुआ? दुर्योधन अपने को जानता था कि सारी धूर्ताई का पाठ पढ़ के तो मैं खड़ा हूं, फिर भी चक्रवर्ती, सफलता पर सफलता, कारण क्या है? इसलिए भगवान से पूछा। भगवान ने कहा, दुर्योधन पिछले जन्म में एक बार तुमने मुझे भोजन कराया था, उसी के प्रभाव से तुम चक्रवर्ती हुए। बोले केशव वो कैसे? बोले देखो, पिछले जन्म में तुम्हारे माता पिता यही थे और तुम बच्चा ही था, 3 दिन में तुम लोगों को भोजन मिला, इतने में मैं पहुंच गया एक संत के बेस में और हमने पुकार लगाया, जान जा रही है कोई दानदाता, अंतिम सांस अटकी है, कोई है भोजन देने वाला? तो तुम्हारे बाप ने कहा कि नहीं, मैं मुझे 3 दिन पर आज अन्न मिला है, मैं नहीं दे सकता। तो हमने कहा, अरे भाई मैं 4 दिन से भूखा हूं, तुमसे ज्यादा मुझे जरूरत है। तुम तो एक दिन और जीवन जी सकते हो। तुम्हारी माताजी जानती थी, देना भी चाहती थी, लेकिन अपने पति का अनुसरण किया। तुम भी 3 दिन का भूखा था, लेकिन तुमने सहर्ष अपना भोजन मुझे दे दिया। मैंने पुकार लगाई, बोले अरे दानी भक्त, दानी शिरोमणि, प्राण जा रहे हैं, इससे हमारा कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारी माँ ने भी दे दिया। फिर मैंने रट लगाई तो फिर अंत में देखा कि मासूम बच्चे ने दे दिया, स्त्री ने दे दिया, तो सास करके तुम्हारे पिता ने भी दे दिया। इसलिए वो आंखों अंधा है और तुम्हारी माँ आंख पे पट्टी बांधे हुए है, क्योंकि जानती थी लेकिन फिर भी अनुसरण उसका किया। और इसीलिए तुम चक्रवर्ती नरेश हो दुर्योधन। तो दुर्योधन ने सोचा, जब कुछ नहीं था, किसी तरीके से 3 दिन में अन्न जुट पाया था, वो भी साधारण सत्तु जैसा, उसके परिणाम में तो हम चक्रवर्ती हुए, अब तो हमारे पास बहुत कुछ है, क्यों न मैं जी भर के इनको खिला दूं। और फिर आगे न जाने क्या रंग लाएगी हमारी तकदीर। बोले भगवान आप भोजन नहीं करेंगे। बोले दुर्योधन यदि तुम खिलाओगे तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा, अवश्य खाऊंगा। तिथि निश्चित हो गई। दुर्योधन ने अपने स्टाल में मन चाहा 56 प्रकार बनवाने का आदेश दिया, स्वयं खड़ा हो गया बनवाने, और जितनी माथहती स्टेटें थी सबको आदेश दे दिया कि अपने अपने शिविर में स्पेशल 56 प्रकार बनाओ। मधरवन मगध नरेश का भंडार अलग चिता, अंगदेश का भंडार अलग चिता, अलग अलग इसी तरीके से मदर नरेश का अलग चिता। भोजन रात को 12 बजे बरे में एकदम तैयार। और बड़े सुबह कृष्ण भगवान एक कोढ़ी का भेष बना के पहुंच गए 4 बजे। बोले अरे बचवा दुर्योधन, प्राण जा रहे हैं, अरे बचवा दान दाता, तू राजा महाराजा है, अरे मिली 2 रोटी हमों के, दया कर बचवा, तू तो सुनते हैं बहुत बड़ा धनी है, राजा है, प्राण जा रहे हैं, संकट में है। तो दुर्योधन ने कहा कौन चिल्ला रहा है, ये साले भीख मांगे जब देखो तब दिखाई पड़ जाते हैं, सिपाहियों ने रोका क्यों नहीं इनको, इसके गर्दन में हाथ लगा के इसको ढकेल दो। तब फिर सिपाही ने लापक के धरा कृष्ण का गर्दन, लगा ढकेलने। तो कृष्ण ने कहा अरे भाई मैं तो जा रहा हूं, तू गर्दन क्यों पकड़े, गर्दन तो छोड़ दे। बोले भैया आपकी गर्दन पकड़ने से हमें बड़ी शांति मिल रही है, मैं राहत महसूस कर रहा हूं, मुझे बड़ा प्यार जग रहा है, लेकिन गर्दन नहीं छोड़ूंगा। वो दुर्योधन देख रहा है, कदाचित गर्दन छोड़ दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, इसलिए गर्दन तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन आप कृपया 12 बजे आ जाइए, मैं आपको पहचान के भोजन करा दूंगा। और ढकेल दिया। अब कृष्ण भगवान ने खड़े होके घूम के देख लिया उन भंडारों की तरफ, सब भंडार साफ, जैसे कभी उन पात्रों में कुछ बना ही नहीं था, चमाचम। फिर भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि ये हैं 3 परिवार, एक परिवार तो मुझे गर्दन में हाथ धर के ढकेल रहा है, दूसरा परिवार मुझसे रथ हाँकवा रहा है अर्जुन, तीसरा परिवार है विदुर का, जला उसको तो पता लगा ले। जब विदुर के वहां पहुंचे, विदुरानी खड़ी हो गई, उसे वस्त्र का भी आभास नहीं रह गया मारे प्रेम और स्नेह के, और लगी केला फेंकने छिलका खिलाने। जब विदुर ने आके देखा तो बोले अरे तू ये क्या कर रही है, क्या खिलाना चाहिए तुम्हें, ये भी होश नहीं। तब कृष्ण ने कहा नहीं विदुर जी, इसमें जो वो प्यार वो स्नेह है, या तो सबरी के बेरों में था या इसके छिलकों में है, खाना तो सब जगह मिल रहा है, इसमें प्यार मिला है, समर्पण मिला है, तो दान लोक में समृद्धि भी देता है, परम श्रेय की प्राप्ति भी। और फिर दुर्योधन ने कहा कि अच्छा दो थाल लगाओ, एक हमारे लिए एक कृष्ण के लिए, और फिर सबको खिलाओ। तो लोगों ने आके रिपोर्ट दिया, बोले हजूर इसमें तो कुछ है ही नहीं, सब साफ जैसे भोजन कभी बना ही नहीं था। तो दुर्योधन भाग के आया, बोले अरे 12 बजे तक तो मैं पांव पर खड़ा था, बनवा रहा था स्वयं, आखिर हो क्या गया? यहां भगवान की विरकुटी है, वहां सब गहगट, उनकी विरकुटी भील घूम गई, तो भूंजी मछली जल में गिरी, राजा नल पर विपद पड़ी, कंचन छुवत होत कर माटी मांगे भीख न पई। दुर्योधन का सब स्टाल साफ, और वो फिर देखने को मिल गया, ठीक लड़ाई छिड़ी, कुछ दिन बाद एकदम साफ, वंश वंश में कोई आंसू बहाता और जलदाता भी नहीं रह गया था दुर्योधन को। जो समृद्धि उसने संजो रखी थी सब पांडवों के पास चली गई। तो दान सदैव परमात्मा की ओर है, और इससे भी बड़ा दान अन्नदान यरुरस पीयूष। अन्नदान नहीं है, अन्न जीवन है, अन्न प्राण है। कैसा भी हो भूखे को अन्न देना, वो तो पेट में चला गया, जो हमने दिया वो खून में रवा हो गया, रस बन गया, वो जीवन का एक तत्व बन गया। इसलिए अन्न सदैव सर्वोपरि दान है, और अन्न दान नहीं बल्कि जीवन है। और इसके बाद में दान का नंबर आता है, जो भी जरूरत हो जरूरतमंद को दो। इससे भी बड़ा दान है विद्यादान। यदि कोई विद्यादान करता है तो वो अपने जीवन की शुभ घड़ियों की व्यवस्था कर लेता है, अच्छा जीवन जी लेता है। किंतु उससे भी श्रेष्ठ विद्या होती है सद्गुरुओं की, जो सद्गुरु ही दे पाते हैं, सब नहीं। उस विद्या का स्वरूप है विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या उसे कहते हैं कि जिसके पास आवे उसको घसीट के ब्रह्म गति प्रदान कर दे। बीच में यदि लीकेज हो गया रिद्धियां सिद्धियां में किसी प्रलोभन में, तो सिद्ध है कि अविद्या कामयाब हो गई। विद्या और ये अविद्या और विद्या माया के दो पहलू है। लक्ष्मण ने पूछा भगवान ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, जिस संपूर्ण सुख का स्रोत क्या है। इस प्रकार 7 प्रश्न पूछे। सीता चोरी हो चुकी थी, राम और लक्ष्मण ही आमने सामने थे। सर्वोपरि प्रश्न लक्ष्मण ने रखे भैया का मन बहलाने के लिए कि प्रेम से जरूरत रही होगी लक्ष्मण को। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया, मैं हूं मेरा है, तू है तेरा है, बस इतनी ही माया है। जिसने चराचर जीव जगत को प्राधीन कर रखा है, बस में कर रखा है। ते ही कर भेद सुनऊ तुम शो, विद्या या परे अविद्या दो। इसके दो भेद है विद्या और अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, तापस जीव पड़ा भव कूपा। एक अविद्या अत्यंत दुष्ट, जिससे विवश होकर जीव भव कूप में पड़ा है, और दूसरी विद्या। एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। वो शत्र स्तंभ तीनों गुण को गुणों को संयत करने में सक्षम है, वो है विद्या। गुण जिसके बस में है, गुण जिससे संयत होते हैं, गुण बस जिनके जाके, और प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। किंतु उस विद्या का जागृति उस क्षण से होता है जिस क्षण से प्रभु प्रेरक के रूप में आपकी आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाए, मार्गदर्शन करने लगे, उठाए बैठाए, मार्ग रास्ता बताए। आगे जब साधना और उन्नत हो जाती तो उंगली पकड़ के चलाए। ये विद्या सद्गुरुओं की विद्या है। एक प्राचीन उपाख्यान है कि उदालक नाम के ऋषि थे, वो बहुत ही अपने समय के सर्वोपरि ऋषि। उन्होंने एक बार एक लक्ष्य से गोदान किया। वो ऐसी गायों को इकट्ठा कर पाए थे कि जो अंतिम चारा मुंह में ले चुकी थी, अंतिम मल त्याग कर चुकी थी और अंतिम दूध दे चुकी थी। अब उन्हें भविष्य में न तो एक तृण मुंह में डालना है और रंच मात्र भी मल त्याग करना शेष है, उस प्रक्रिया बची है, और नहीं कोई परिणाम देने की, दूध देने की। ऐसी अवस्था की एक लक्ष्य गाय उसने दान किया विप्रों को, तो नचिकेता उसी का पुत्र था। उसने कहा, पिताजी मुझे भी दान करिए, किसे देंगे? बोले, यमराज को। नचिकेता सीधा यमराज के पास पहुंच गया। यमराज ने उसको मारा नहीं, यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने कहा, पुत्र तुम राज्य ले लो। बोले, नहीं भगवान, हमें केवल आत्मा चाहिए। आत्मा क्या है? तो बोले, रिद्धियां ले लो, सिद्धियां ले लो, ब्रह्मधाम ले लो। बोले, प्रभु हमें केवल आत्मा चाहिए। वो आत्म तत्व क्या है? यमराज ने बहुत टाला। ये जो कुछ यमराज दे रहे थे, ये भी एक दंड ही था। क्यों? कि पहले दंड था सांसारिक प्रवृत्तियों का, और यदि रिद्धियों सिद्धियों में बहक गया साधक तो पुनर्जन्म होगा उनको भोगने के लिए, लक्ष्य वंचित रह जाएगा आत्म तत्व से। लेकिन उसने कहा, नहीं प्रभु, हमें केवल आत्म तत्व चाहिए। वो क्या है, क्या स्वरूप है? अंत में यमराज ने हार मानकर उसे उस आत्म तत्व का उपदेश नहीं दिया बल्कि आत्म तत्व का साक्षात्कार करा दिया। दर्शन स्पर्श और आत्म स्थिति पा गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस कर्म को किए बिना न कोई कभी प्राप्त कर सका है और न ही भविष्य में प्राप्त कर सकेगा। किंतु कर्म के परिणाम में जहां आत्मा विदित हो गई हो, आत्मा से तृप्त ओतप्रोत और स्थित हो, उस पुरुष के लिए किंचित भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं। किए प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं, न किए जाने से लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि। फिर भी वे महापुरुष पीछे वालों के हित की इच्छा से भली प्रकार क्रिया में बरतते हैं उनके कल्याण के लिए। नचिकेता ने वो तत्व प्राप्त कर लिया जिसके बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं। ये एक रूपक है। कालांतर में गो का अर्थ हो गया गाय, गाय दान दो तो फलानी चीज दान दो। नो, गोदान का अर्थ होता है गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान्यों भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहां तक मन कल्पना कर सकता है, बुद्धि निर्णय ले सकती है, सो सब माया जान्यों भाई। वो माइक क्षेत्र का ही निर्णय है, क्योंकि मन और बुद्धि छोड़ के तो मानव के पास कुछ है नहीं सोचने के लिए, इससे बड़ा यंत्र नहीं। इंद्रियें उसके मातहत हैं और इनके द्वारा निर्णय लिया हुआ चाहे कितना भी बड़ा उसको उपाधि दे दो कि अति इंद्रिय ज्ञान, किंतु है तो माया क्षेत्र का ही निर्णय। गो माने इंद्रिय, इन गो को संयम सदगुरु को उदालक उदात अवस्था चिंतन की अभ्यास इतना सूक्ष्म हो गया कि इन गो माने मन सहित इंद्रिय, इनकी सहस्रों अनंत प्रवृत्तियां हैं, लाखों वृत्त प्रवृत्तियां हैं, संकल्प संचारित होने की सारी प्रवृत्तियां सिमट के संयत हो गई और अंतिम तृण ले चुकी। अब किसी वासना ये नहीं ले सकेगी, इस प्रकार का निरोध हो गया। इनके अंतराल में कोई मल आवरण विक्षेप जो संस्कारों के रूप में था, लेश मात्र भी नहीं रह गया, सब अंतिम त्याग हो चुका। और अब ये इंद्रिय जन्य भोगों के द्वारा जो शुभ अशुभ परिणाम दिया जाता है, दुग्ध ने वही अंतिम बूंद भी दे चुका दूध, अब ये कोई परिणाम नहीं देगी, निष्क्रिय निरोध हो गई, संयत हो गई बलि प्रकार। ऐसे संयत इंद्रियों की अवस्था काल में नचिकेता न चित्त करता, चित्त सम स्थिर हो जाएगा। अब वो चित्त क्रियाहीन संकल्पहीन अचल स्थिर ठहरने की अवस्था वाला हो जाता है। ऐसा चित्त ही जो भगवान है, तिनकर काल रूप में ताता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता, भगवान कहते मैं ही जो चाल रास्ता नहीं चलता उसके लिए काल स्वरूप हूं। काल कोई अलग सत्ता नहीं है, भगवान की एक प्रक्रिया का नाम है। तो भगवान जो भले बुरे का निर्णय देने वाले हैं, प्रभु कालों के भी काल उसके समकक्ष पहुंच जाता है, खड़ा हो जाता है। ऐसा निरोध चित्त जिसकी इंद्रियां अंतिम तृण चूर्ण चूकी, अब वाग विकारों में जाएगी ही नहीं, अंतिम मल त्याग चूकी, अब मल है ही नहीं त्यागे क्या, अंतिम परिणाम दे चुकी, अब किसी प्रकार का परिणाम दे के आपको नहीं भटका सकती, ऐसी निरुद्ध जब इंद्रियों का प्रवाह वृत्ति का जब हुआ, तो एक सदगुरु के प्रति विप्र के प्रति समर्पण हो गया भली प्रकार। ये समर्पण की अंतिम अवस्था तो चित्त कर्ता धर्ता की अवस्था से ऊपर उठ गया नचिकेता। अब कर्ता धर्ता केवल प्रभु, तो भगवान पहले कहेंगे मांग लो वर, रिद्धि लो, सिद्धि लो, ब्रह्मलोक लो, शायद कोई लिप्सा हो, तो बोले प्रभु हमें केवल आत्म तत्व चाहिए, केवल आप चाहिए। वो आत्मा क्या है? परमात्मा का ही एक वैदिक काल का नाम आत्मा है। आत्मा का मतलब कि आपके अंतःकरण के अंतराल में जिसका निरंतर निवास होने से एक नाम प्रभु का ही आत्मा है। तां भगवान ने प्रसन्न होकर फिर अंतिम वो आत्म तत्व का दर्शन कराया, नचिकेता परम स्वरूप में समाहित हो गया, स्थिति पा गया। गोदान का मतलब होता है मन से इंद्रियों का समर्पण। पूर्ण समर्पण तब है जब हम अपना चारा चुनना बंद करें और गुरु सदगुरु के हाथ का यंत्र बना दें। इस ऐसे समर्पित पुरुष के हृदय में उस विद्या का सूत्रपात होता है जिसका नाम है अध्यात्म विद्या। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, विद्या उसे कहते हैं जिसके पास आवे उसको घसीट के ब्रह्म गति प्रदान कर दे। इससे भी सर्वोपरि दान, जब प्रभु की शरण जाते हो तो भगवान भी दान दाता। आखिर उन्होंने आत्म तत्व यमराज ने दिया, वो यम धर्म के रूप में परिवर्तित हो गए थे और दिया, जिसके आगे कुछ पाना शेष नहीं, कुछ त्यागना शेष नहीं, जहां जन्म नहीं मृत्यु नहीं, उसे अलग शांत और सम स्थिति प्रदान कर दिया। भगवान भी दाता। महाराजा मनु एक बार, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु, हो ही न विषय विराग, भवन बसत भाचोथपन। चक्रवर्ती नरेश नहीं थे, सृष्टि उनकी जन्माई हुई, देवलोक उनका जन्माया हुआ, आदि महाराजा मनु जिसके पास कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार के ऐश्वर्य का अभाव नहीं था, देवलोक उनके चलाए चलता था, सारे लोग उनके चलाए चलते थे, विदाता के बाद उन्हीं की पोस्ट थी, किंतु दुखी हो गए। बोले ओ भाव, घर में रहते रहते चौथापन आ गया, हृदय बहुत दुख लाग, एक अदृश्य कमी खटक रही थी, वो था आत्मतत्व। और बरबस राज्य दिया पुत्र को, और गए नेमी सारण, ऋषियों से मिले, साधना क्रम समझा, और शांत एकांत भजन में जब लग गए, तो बैठने से पहले उन्होंने विचार किया कि भजन हम किसका करने जा रहे हैं, हम क्या खोजने जा रहे हैं। तो विष्णु वीरंचि शंभु भगवाना उपजई चाशु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बसे हैं भक्त हे तु लीला तनु गहें। ब्रह्मा विष्णु और शिव ऐसे भगवान जिनके अंश मात्र से अनंत प्रकट होते और विलय होते ही रहते हैं, ऐसा भी प्रभु सेवक के बस में है। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा तो हमार पूजे अभिलाखा। यदि वेद का ही वाक्य सच है तो मेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी और वो सेवा में लग गए, अर्थात उन प्रभु का सेवन करने में चिंतन में लग गए। अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा तब हूं मनागमन ही नहीं पीरा। उरे अभिलाष निरंतर होई देखिए नयन परम प्रभु सोई लगे ही रह गए। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए वर देने के लिए। यमराज ने नचिकेता को वर देने के लिए कहा, ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश जो मनु के पास पहुंचे कि विधि हरि हर तप देखी अपारा मानु समीप पहुंचे बहु बारा मांगे हूं बर बहु भांति लुभाए परम धीर नहीं चलई चलाए। वर मांगो वर मांगो विविध तरीके से बहु भांति लुभाए, कुछ दे तो नहीं रहे थे। काम क्रोध मोह लोभ खड़ विकार हैं, उनमें से एक विकार लोभ को आगे बढ़ा रहे थे। नारद अहंकार से गए कि वाह हम भी शिव के बराबर हो गए। विश्वामित्र काम से गए, मेनका आई और थोड़ा सीखा पढ़ा के निकल गई, आकाशवाणी हुई कि तुम पतित हो गए। लेकिन स्वर्गलोक तो मनु का जन्माया हुआ, वो तो इन्हें भटका ही नहीं सकती थी। तब जब इनकी परीक्षा की घड़ी आई तो इनसे जो वरिष्ठ थे वो आए, ब्रह्मा विष्णु महेश मनु समीप पहुंचे बहु बार 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 आए, वर मांगो विष्णु धाम ले लो ब्रह्म पद ले लो। लेकिन परम धैर्यशाली थे, वो विचलित नहीं हुए। तब भगवान ने देखा कि केवल मुझे चाहता है, इसकी दृष्टि सीधी मुझ पर टिकी हुई है। तब प्रभु ने करुणा करके आकाशवाणी दिया कि मृतक जियावनी गिरा सुहाई श्रवण रंध्र हुई उर जब आई हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानहु अब ही भवन ते आए। मृतक जियावनी जो मुर्दों को जीवन देने वाली, ये जो शरीर मर गया शरीर जी गया नहीं, ये मुर्दे नहीं। मनुष्य जिंदा है तब भी मुर्दा ही तो है, ये तो हमें एक पड़ाव मिला है मानव तन, क्षणिक जीवन मिला है। जन्म हुआ जवानी आई बाल पकने लगे और राम नाम सत्य, अनंत योनियों में से एक योनि, बड़े भाग्यमान स्तन पावा। यदि मिला हुआ यदि वस्त्र ये कैंचुल आपको मिली भी है तब भी ये छूटेगी और दूसरी मिलेगी, जो नश्वर है वो तो शाश्वत होगा नहीं। इस मरण धर्मा मनुष्य को अविनाशी पद शाश्वत जीवन प्रदान करने वाली वाणी जब मनु के हृदय में गूंजी, वही जीव मृत्यु सराहनीय जिसके पीछे जन्म में हो और वही जन्म सराहनीय जिसकी पुनः मृत्यु में, वो अमृत तत्व को दिला देने वाली वाणी जब हृदय में गूंजी तो मनु को ऐसा लगा कि हमने साधना का श्रम ही नहीं किया, अभी ही आके बैठे ही थे जंगल में कि भगवान मिल गए, ये तो बड़ा सस्ता रहा। चिंतन तो इतना किया कि अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा नरकंकाल मात्र रह गए थे, श्रम उतना। लेकिन जब भगवान की आकाशवाणी का संचार हुआ तो सब विस्मृत हो गया, कारण कि भगवान के संचार के साथ ही जगत का भान, जगत के सुख और दुख का भान स्मृति पटल से उड़ जाता है। जेहि जाने जग जाई हेराई जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। और मनु को लगा कि भगवान तो बड़े सरलता से मिल गए। भगवान ने सोचा शायद भक्त को कोई इच्छा हो, तो बोले वर मांगो। तब मनु गिड़गिड़ाने लगे, जथा दरिद्र विबद तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। दरिद्र यदि कल्प वृक्ष पा जाएगा तब भी बहुत संपत्ति मांगने में संकोच होता है, पता नहीं ये दे पाएगा कि नहीं। तथा हृदय मम संशय हुई, इसी प्रकार मेरे हृदय में प्रभु संदेह हो रहा है। तो भगवान ने पुनः आकाशवाणी दिया, बोले अरे महादानी अनुमानी, मुझे महान दानी जानो और जो चाहो मांग लो। तब भगवान महाराजा मनु उन भक्त शिरोमणि ने कहा, प्रभु तो फिर केवल हमें आप चाहिए। तो बोले अरे मेरे जैसा मॉडल तो है ही नहीं सृष्टि में कहीं, मैं दूसरा कहां से ला दूं, मैं ही तुम्हें प्राप्त होऊंगा। तो और इस जो मनु प्रसंग है मानस में, ये छोटा मॉडल है, ये नक्शा है, नक्शे के अनुसार थोड़ा माटी का बना जैसे मॉडल होता है ना, ये मॉडलिंग है। इसी का विस्तार संपूर्ण रामचरितमानस से ये आपके अंतःकरण की कथा है, ये भजन योग साधना की सर्वांग संपन्न पूर्ण विधि है। बस तो सर्वोपरि दाता है भगवान, भगवान को हमने समर्पण भी किया तो क्या किया, संसार तो उनके तेज के अंश मात्र से अभ्युदय होता रहता है और परिवर्तित होता रहता है, इसमें से हमने कुछ दे ही दिया तो हमने क्या दे दिया, क्या इसकी उन्हें जरूरत है क्या। जब मन से संपूर्ण सृष्टि की लिप्साओं को त्याग कर हम केवल प्रभु में अपने श्रद्धा मन प्रेम से सूरत की डोरी लगा लेते हैं, भगवान सुनवाई करते हैं और उस जीव को जब वो प्रभु देते हैं तो अपना स्वरूप दे देते हैं। भगवान का क्या स्वरूप है, अविनाशी, अविनाशी पद दे देते हैं। भगवान का क्या स्वरूप है, सदा रहने वाली समृद्धि के स्वामी, सर्वज्ञ, ये सारी विभूतियां जो भगवत्ता की है वो आप में प्रसारित हो जाएगी। भगवान देते हैं तो सदा रहने वाला ऐश्वर्य, फिर कभी ने घटे, बदले में आपने उनको जो समर्पित किया है, अपनी वासनाओं से चित्त को समेट के उनके चरणों में सौंपा है, और ये सौंपा था विप्र के चरणों में गोदान, और जो जो हम गोदान देंगे त्यों त्यों आपके हृदय में उस विद्या का सूत्रपात होगा जो बीच में कहीं लीकेज नहीं होती, ब्रह्मगति प्रदान करती है। ये सर्वोपरि दान दाता है प्रभु, भगवान देते हैं तो अपनी भगवत्ता दे देते हैं, ऐसी समृद्धि जो कभी न कभी आपका साथ घटेगी ही नहीं। पूर्ण मद है पूर्णमिदम, पूर्णात् पूर्णमिदोच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। किंतु मनुष्य के लिए जो सर्वसुलभ दान की व्याख्या है वो अन्नदान, भूखे को भोजन चाहे कैसा ही क्यों न हो, फिर जो कुछ आपसे जैसे जैसे स्तर उठता जाए आपके दान का स्तर बढ़ता जाएगा। दान से हम संसार की पकड़ को ढीली करते जाते हैं, और जो जो ये ढीला होगा ता ईश्वरीय परिवेश वो पकड़ मजबूत होती जाएगी। दान एकदम परम श्रेय, अपने आत्मपथ, सदा रहने वाली समृद्धि और अनंत जीवन ऐश्वर्य की ओर ले जाती है, कच्चे सौदे से मुक्ति दिलाकर सदा रहने वाले शाश्वत धाम में प्रवेश दिलाता है। दान मोक्ष की ओर है। दान आरंभ में तो हृदय में नहीं होता, देखा ही देखी होता होगा, दान हृदय से होना चाहिए। जो हृदय से दान होता है वो समय पर याद आता है, और ढकेलुआ दान समय पर नहीं स्फुरित नहीं होता। महाभारत की एक कथा है, कृष्ण जब देखो तब कर्ण की तारीफ करें, वारे कर्ण दानी, कर्ण तुम्हारे माता पिता धन्य, तुम धन्य हो कर्ण। जब देखो तब कर्ण की तारीफ, और अर्जुन को ये बात अखर जाती थी। एक दिन अर्जुन ने पूछा, भगवान युधिष्ठिर किस माने में कर्ण से पीछे है, उससे कोई मांग ले तो अपना पूरा साम्राज्य दान कर देंगे, फिर भी जब देखो तब आप कर्ण की ही तारीफ करते रहते हैं। हाँ माना कि उसमें एक गुण है दान का, लेकिन धूर्तों की संगत भी करता है। बोले अर्जुन, इसका उत्तर हम फिर कभी देंगे। और भगवान कृष्ण ने वो चर्चा ही बंद कर दिया। 6 महीने बाद कृष्ण ने देखा कि अर्जुन उस वार्ता को भूल चुका है। और बरसात की ऋतु थी, 7 दिन से पानी की बूंद नहीं टूटी, झड़ियार लग गया। तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन यार घर में बैठे बैठे उब तो गए, चलो कुछ दिल बहलाया जाए। और दोनों ने एक संत का वेश बनाया, भिक्षा पात्र लिया और सीधा युधिष्ठिर के महल में पहुंच गए। युधिष्ठिर सिंहासन से उठ के खड़े हो गए। बोले भगवान, इस वर्षा में भी आप लोगों ने कृपा की है, मेरा हो भाग्य, कहिए मैं क्या सेवा करूं। बोले राजन, केवल भिक्षा, किंतु हम लोग हैं सोहम पाकी, स्वयं पका के खाते हैं। हम लोगों का एक व्रत है कि चंदन की सूखी लकड़ी से ही भोजन पकाते हैं। तो वो बोले भगवान, अभी व्यवस्था होती है, सारी व्यवस्था तो युधिष्ठिर कर लेंगे, लेकिन चंदन की सूखी लकड़ी, पूरा महल ढूंढ डाला, एक चेली नहीं मिली। तब 4-6 रथ दौड़ा दिया शहर में, जल्दी मार्केट से लाओ, वहां भी एक चेली नहीं मिली। कारण कि कृष्ण को जब कोई कांड करना होता था तो पहले व्यवस्था दे देते थे, बाजार भर का चंदन खरीदवा लिया एक व्यापारी के बेच के, पूरा पैसा ले लो, बाहर रख दो बरसती हुई खुले आसमान पर, और जिस दिन पानी बंद हो घर में रख लेना, भला बनिया चूकेगा, सौदा तो पैसा भी मिल गया और वस्तु भी हमारे पास। पूरा मार्केट घूम डाला, एक चेली नहीं मिली। युधिष्ठिर छटपटाने लगे, अंदर जाए बाहर आवे। तब कृष्ण ने कहा, राजन आप चिंता न करें, हम कहीं अन्यत्र भिक्षा कर लेंगे। सीधे पहुंचे कर्ण के पास। कर्ण ने सादर उठ के चरणों में अब नमन किया। बोले प्रभु शिवा। तो बोले कर्ण, केवल भिक्षा, चंदन की सूखी लकड़ी से। तो बोले भगवान, आप अन्य व्यवस्थाएं करें, मैं अभी व्यवस्था करता हूं लकड़ी की। उसने भी महल खुजवाया, मार्केट में 2 रथ दौड़ाए, एक चेली नहीं मिली। तुरंत धनुष उठाया और मारा चौखट में, बड़ा वाला जो गेट था ना चंदन का, मारा तो चरमरा के गिर पड़ा। फिर मारा फर्नीचर में तो वो भी ढेर हो गया। फिर मारा जिस तखत पर सिंहासन बना हुआ था उस पे मारा तो वो भी चूर हो गया, ढेर लगा दिया। बोले भगवान, जब तक कर्ण के हृदय में प्राण है शरीर में, तब तक आप यहीं निवास करें और सूखी लकड़ी से भोजन बनाएं। उल्टा सीधा 4 लिट्टी लगाया, दोनों संत ने चले गए। शाम को अपने वेशभूषा में जब युधिष्ठिर के पास पहुंचे तो युधिष्ठिर के पता नहीं कब से रो रहे थे, आंसू ही नहीं थम रहे थे। सब वैद्य डॉक्टर फेल, किसी से कुछ कह ही नहीं रहे थे, केवल आंसुओं की धारा, तकिया भीग गया, उल्टे मुंह पड़े। तो कृष्ण ने कहा, राजन ऐसा आपसे क्या अपराध हो गया कि इतना लंबा पश्चाताप? बोले कृष्ण, केवल एक बात बताओ, मुझे याद क्यों नहीं आया, इन महलों में आग क्यों नहीं लग जाती? करण से 100 गुना ज्यादा मेरे पास फर्नीचर है, ज्यादा ही चंदन के और भी किवाड़े हैं, महल बड़े हैं, मुझे याद क्यों नहीं आया? करण ने उन संतों को भोजन करा दिया और मैं अभागा नहीं करा सका, ये बताओ मुझे याद क्यों नहीं आया? तब कृष्ण बोले, राजन जिसके जो हृदय में होता है उस समय पर याद आता है, और जो ढकेलुआ जो दान पुण्य और क्रियाएं करते हैं कि शास्त्र कहता है, नीति कहती है, राजा का धर्म है, ये मानवता है, अवश्य देना चाहिए, इस तरीके से जो ढकेलुआ धर्मात्मा होते हैं उनको समय पर याद नहीं आता। करण के दान हृदय में बसता है, इसलिए जो हृदय में बसता है उस समय पर स्फुरित हो जाता है कि कौन वस्तु कहाँ प्राप्त हो सके। तो दान भी ऐसा है, जो भी दो, एक ग्रास भी दो तो हृदय से दो। दान दान के विषय में हर महापुरुष ने भरपूर बल दिया और दान देने की क्षमता भी, वास्तविक सच्चा दान देने की क्षमता महापुरुष में ही होती है। पूज्य महाराज जी का कहना था, सब दानी ही तो बने, 50 रुपया चढ़ाते हैं बदले में हाथी मांगते हैं, दान करते हैं कि सौदा, असली दानदाता मैं हूं जो मोक्ष प्रदान करता हूं। गुरु नानक ने दान की इतनी बढ़िया व्यवस्था दी कि अपने गुरु दरबार में जो भी आवे उसको प्यासे को पानी और भूखे को भोजन। आज भी उनके आदेशों का मर्यादा के साथ पालन किया जाता है। गुरुद्वारे में आप पहुंच भर जाओ, कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन जात हैं, किस मजहब के हैं। सम्मान आपको कड़ा प्रसाद मिलेगा, चाय मिलेगी, दाल मिलेगी, रोटी मिलेगी। अन्नदान दान नहीं, अन्नदान एक जीवन है, इस सर्वोपरि है। महापुरुषों का एक बहुत कड़ा दोहा है कि पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दान, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। नाव में छिद्र हो गया और लगा पानी बढ़ने, और 1 किलोमीटर पाट है उधर और इधर, आप हैं बीच धारा में, क्या करोगे? सब लिपट के दोनों हाथों से उसको बाहर फेंकना शुरू करोगे। कदाचित हल्कापन आ गया आपके इस प्रक्रिया में तो मौत निश्चित है। उसको उलीचने पर ही आपका सयानापन है, आपकी बुद्धिमानी। ठीक इसी प्रकार यदि किसी के पास आंटता बांटता हो, घर में दाम बढ़ गया हो, तो उसको उलीचिए, उसको दान के मार्ग में लगाइए। क्यों? कि मनुष्य शरीर हर बार नहीं मिलता, बड़े भाग्य से मिला है, ये लक्ष्य प्राप्ति के लिए मिला है, भव सरिता से पार होने के लिए मिला है, और पार होने का तो एक ही उपाय है, दान। उसको उलीचिए, सदमार्ग में लगाइए, सतपथ की ओर ले चलिए, आप भिक्षा दीजिए। एक महापुरुष हुए सुखदेव त्यागी। एक राजा ने यज्ञ किया, बहुत यज्ञ किया, बड़ा दान दिया, लेकिन सफलता का जो सिम्टम थे वो प्रकट ही नहीं हुए। भ्रमण करते हुए सुखदेव पहुंच गए, उन्होंने थोड़ी सी कांजी पी ली, उनकी अनुनय विनय प्रार्थना पर वो सिम्टम प्रकट हो गए। घंटा आकाशम बज गया तो महापुरुष विश्व आत्मा होते हैं, उनको खिलाना पूरे विश्व की सेवा के तुल्य होता है, खिलाने के समान। बोलो श्री गुरुदेव भगवान।